ओम नमस्ते जी। अष्टम श्रव्य कणिका वैदिक जीवन भारती। आज हम आपको चर्चा कर रहे हैं वैदिक परिवार पर। वेद परिवार विज्ञान को इस प्रकार अभिव्यक्त करता है, गृहस्थाश्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष पथ ले जाने वाला अश्व है, यानी गृहस्थाश्रम रूपी घोड़े पर बैठ करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि की जाती है। यह अविराम गति है, प्रशिक्षित गति है, सौहार्द सेवा निरोगिता सुख शांतिदायक आनंददायक है गृहस्थाश्रम। अविनामी विस्तरणशील है, कालवत सर्पणशील है, ज्योति है, तीनों आश्रमों की आधार वृषा है और उमंग उत्साह के प्रवाह से पूर्ण है। गृहस्थाश्रम वेद प्रचार केंद्र है, शिशु के आह्लाद और उत्साह का केंद्र है, परिवार सदस्यों द्वारा जिसमें शुभ गमन है, रमणीय आश्रम है, श्रेष्ठ निवास है, श्रेष्ठ समर्पण है, स्वाहा है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम के ये सारभूत तत्व यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 19वें मंत्र में दिए गए हैं। परिवार व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली प्राथमिक कड़ी है घर। परिवार के स्वस्थ सुसंयुक्त होने से ही विश्व समुदाय स्वस्थ एवं सुसंस्कृत हो सकता है। वैदिक परिवार में माता पिता सास ससुर पुत्र पुत्रियां देवर ननंद एवं भृत्य भृत्य माने सेवक का समावेश है। गृहपत्नी परिवार का केंद्र है, गृहिणी परिवार का केंद्र है, गृहपत्नी परिवार साम्राज्यी है यानी रानी है। यह अथर्ववेद के 14:1-44 में आया है। गृहपत्नी और गृहपति का संबंध श्रेष्ठ होता है। गृहपति ज्ञानी है, गृहपत्नी भी वैसी ही ज्ञानी है। गृहपति साम मंत्र है, गृहपत्नी ऋग्वेद मंत्र है, गृहपति द्यूलोक है, गृहपत्नी पृथ्वी संभाव हो। ये अथर्ववेद के 14:2-69 मंत्र में आया है। और इस तरह उपासना में श्रेष्ठ का संभाव आकाश धरावत ज्ञान में संबंध वैदिक परिवार का आधार है। वैदिक परिवार शब्द परिवार सदस्यों के उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं, यानी हमारे यहाँ परस्पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की तरफ जो दायित्व होता है या कर्म होते हैं अधिकार होते हैं वो पारिवारिक शब्दों के अंदर ही अभिव्यक्त हैं। जैसे उदाहरण के लिए वधू, वहति सुखानि प्राप्यति इति वधू, जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके प्रत्येक जन को सुख देती है एवं तत्तत् कार्यों का वहन करती है, वेद वधू को सुमंगली कहता है। स्नुषा गृहपत्नी, इसके तीन अर्थ हैं जो निरुक्त 12:9 में दिए गए हैं। प्रथम है साधु साधिनीति वा, कुल में भली भांति स्थित। दूसरा है साधु सानिनीति वा, कुल पोषण पदार्थ वितरक। तीसरा स्वयं तत्सनोति वा, उत्तम संतान दात्री, परिवार को स्नेह से सरोबार कर देने वाली स्नुषा होती है। इसको प्रादेशिक भाषा में सून कहते हैं, मराठी भाषा में विशेषकर। आगे आता है माता। माता की परिभाषा इस प्रकार है, मिमीते इति माता, कुल को संतुलित प्यार देती है अतः माता है। माता संस्कारदा, माता जो है संस्कारदायिनी है, माता निर्मात्री भवती, माता निर्माण करती है। ये सारे दायित्व के कारण ही मान्यते पूज्यते सत्क्रियते या सा माता, अर्थात मान पूजा और सत्कार के योग्य जो है वो माता है। अब पिता की बात कहते हैं, पाति रक्षति इति पिता, पालन एवं रक्षा करने से पिता है। पुत्र किसे कहते हैं, पहली परिभाषा है पुरुत्रायते, माता पिता की बहुत प्रकार से जो रक्षा करता है वह पुत्र है। दूसरा है निपरणाद्वा, माता पिता की वृद्धावस्था में पालन करता है। आगे भ्राता की बात कहते हैं, भ्राता यानी भाई, भ्राजते दीप्यते असौसा भ्राता, ज्योतित स्नेह का धारक भाई, स्नेह कर्तव्य सामंजस्य में भ्राता, विभर्ति इति भ्राता, विशिष्ट स्नेह द्वारा संरक्षक भ्राता यानी भाई होता है। अब आगे स्वश्री यानी बहन, सुष्टु अस्यति प्रक्षिपति दूरी करोति स्वीणी दुखानी इति स्वसा, भाई के समस्त दुखों का भली भांति निवारण करने वाली का नाम बहन है। भगिनी भगम ऐश्वर्यम कल्याणम इच्छा वा भ्रातरम प्रति अस्ति यस्याः सा भगिनी, भाई के प्रति ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा रखने वाली बहन है। जा माता, जायाम मिमीते मिनोति मार्जयति इति सा जामाता, जो पत्नी को पवित्र रखता है, उत्तम मार्ग में लगाता है, परिमार्जित परिष्कृत आचरण करता है, वह जमाता है, जो बिगड़ करके बाद में जमाई बन गया। स्यालह माने साला, स्यालह आसन्न संयोगेन, जो नजदीकी संबंध वाला है उसको साला कहते हैं। मातुलह यानी मामा, नास्ति तुलायस्य सह मातुः भ्राता मातुलह, जिसके अथाह प्यार की तुलना ही नहीं है वह मातुल यानी मामा है। नंदिनी नंदयति इति नंदिनी, सरसता से आह्लादित कर देने वाली नंदिनी यानी ननद है। इस प्रकार वैदिक परिवार आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा स्नेह सौहार्द से भरा पूरा है। दिव्य पत्नी के गुण ऋग्वेद 1:142-6 छठे मंत्र में दिए गए हैं। संदर्भ विशेष में ये गुण शक्ति रूप में पति के लिए भी धारणीय है, जो प्रथम है ऋत वृधः, सत्य सत्य आचार सदाचार संयम में परिपक्व, इनमें बढ़ने में तत्पर। दूसरा गुण है मही महान पूजनीय गुण युक्त। तीसरा है पावकास पवित्र, पावक यानी पवित्र गुण युक्त गृह परिवार शोधक। चौथा है पुरुष प्रिय यानी बहु रूप लावण्यमय प्रेममय कमनीय कामना करने योग्य। पति संदर्भ में पति आकर्षक मोहक और ओजपूर्ण होना चाहिए। फिर द्वारह दुह यानी दुखों दुरितों कष्टों के निवारण करने योग्य। फिर असश्चत दुर्भोग दुर्विषय और दुर्व्यसन से दूर रहने की भावना युक्त। ये सारे गुण युक्त पति पत्नी ही आदर्श वैदिक परिवार का निर्माण कर सकते हैं। आगे धर्म के स्वरूप को बता रहे हैं कि धर्म क्या है। लौकिक पारलौकिक धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक आर्थिक राजनैतिक व्यक्तिगत अभ्युदय के उपयुक्त देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि युक्त आत्म की भूषण भूत सम्यक नियोजित प्रणाली धर्म है। यानी लौकिक दृष्टि से देखा जाए, पारलौकिक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, या सामाजिक आध्यात्मिक आर्थिक राजनैतिक और व्यक्तिगत के जीवन उत्थान के लिए अपने देह को इंद्रिय को मन को बुद्धि को अहंकार आदि जितने भी अपने भीतरी काम करने के साधन हैं और आत्मा को भूषण भूत सम्यक नियोजित कर्म करने का नाम धर्म है। जिसे धारण किया जाता है वह धर्म है। वैदिक धर्म का दृष्टिकोण व्यापक है। पूर्ण जीवन प्रणाली को ब्रह्म गुणों के संदर्भ में जीना वैदिक धर्म है। ब्रह्म गुण उद्भूत होने के कारण यह धर्म पूर्ण है। जो ब्रह्म को जानता नहीं है उसकी और गुणात्मक रूप में अग्रसर नहीं होता ब्रह्म की ओर, उसे वेद अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। ये बात ऋग्वेद में प्रथम मंडल में 164वें सूक्त में 39 मंत्र के रूप में कही गई है। जो ब्रह्म गुणों को स्व अस्तित्व में सुशोभित करते हैं वे ऐश्वर्य पराक्रम एवं ज्ञान से पूर्ण होते हैं। ये बात ऋग्वेद में लिखी गई है 5वें मंडल में 10 सूक्त में 4 मंत्र के रूप में। केवल मात्र वह परमात्मा ही हमारे सुख साधनों की प्राप्ति में धन लाभ में तथा नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धियों के सम्यक प्रकार से निरंतर विद्यमान रहे और वह ही हम लोगों को सर्वत्र अन्न तथा बल आदि साधनों के साथ प्राप्त हो। ये बात लिखी गई है ऋग्वेद में प्रथम मंडल के 5वें सूक्त के 3 मंत्र में। वास्तव में जीवन की हर साधना ब्रह्म साधना है। विद्या अध्ययन की साधना का उदाहरण इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ब्रह्म सर्वज्ञ है। एक निश्चित पाठ्यक्रम में एक निश्चित समयावधि के भीतर विद्यार्थी के सर्वज्ञ होने का प्रयास का नाम विद्या अध्ययन है और विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक भी इसी सर्वज्ञता के अनुरूप ही मिलते हैं। यदि विद्यार्थी विद्या अध्ययन के इस तथ्य को ध्यान में रखकर विद्या अध्ययन करे तो उसका पढ़ना बोझ नहीं होगा बल्कि आह्लाद कर हो जाएगा। आजकल के विद्यार्थियों को प्रायः मैं विद्यालयों में जाता हूं तो ये सवाल पूछता हूं कि परीक्षा किसे कहते हैं, तो कभी विद्यार्थियों ने इस दृष्टि से विचार नहीं किया होता, इसलिए सोच सोच कर उत्तर देते हैं। वास्तव में परीक्षा वह है कि दिए हुए सिलेबस में विद्यार्थी ने कितना प्रतिशत ज्ञान अर्जित किया। मेरे को बहुत कम ऐसे विद्यार्थी मिले जो 100% ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य सामने रख करके विद्या अध्ययन करते हों। ज्ञानार्जन के लिए विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी आज की शिक्षा पद्धति में नगण्य से मिलते हैं। ठीक है, जस्ट पास होंगे तो भी अगली कक्षा में तो जाएंगे ही ना। हर विद्यार्थी अंश प्रतिशत ज्ञान के लिए ही पुरुषार्थ करता है। जब व्यक्ति शत प्रतिशत ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने की दृष्टि से अध्ययन करेगा तो अपने विद्याध्ययन को सार्थक कर पाएगा। ये वैदिक जीवन प्रणाली हमको सिखाती है। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम।